ચેપ્ટર 30 મંગલાચરણ। नाटक आरंभ होने के पहले सूत्रधार द्वारा मंच पर नांदी पाठ किया जाता है। इसके बाद वह उस देवता की स्तुति करता है। उसके उत्सव में उपलक्ष में नाटक का आयोजन होता है। यह स्तुति पाठ ही मंगलाचरण है। सामान्यतः कार्य का निर्विघ्न समाप्ति के लिए किसी भी ग्रंथ के आरंभ में पढ़ी जाने वाली प्रार्थना मंगलाचरण है। उदाहरण, यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल में आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। मंजिष्ठा राग, पूर्व राग का एक भाग। पूर्व राग तीन प्रकार का होता है, नीली, कुसुम और मंजिष्ठा। जो बाहरी दिखावे के रूप न होकर हृदय की गहराई में हो वह नीली राग है। जो बाहरी दिखावे के रूप में अधिक हो किंतु भीतर से न हो वह कुसुम भी राग है, एवं जो बाहर और भीतर दोनों में प्रगाढ़ रूप से दिखाई दे वह मंजिष्ठा राग है। उदाहरण, नल दमयंती दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे के रूप गुण की प्रशंसा सुनते आ रहे थे, जिससे उनका पूर्व राग मंजिष्ठा राग की अवस्था को पहुंचा गया था। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 31। मति, शास्त्र आदि के प्रमाण और तर्क आदि के सहारे किसी बात का निर्णय कर लेना ही मति है। उदाहरण, उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मति, शंका, वितर्क आदि यदि किसी भाव के कारण उत्पन्न हो और वह भाव स्पष्ट से व्यंजित होता हो तभी उनका ग्रहण काव्य में हो सकता है। रस में मानसा पृष्ठ संख्या 213। मद, मद्यपान आदि से उत्पन्न अंग और वाणी में स्खलन लाने वाली चित्तवृत्ति मद है। उदाहरण, मद नामक अवस्था या तो मद्यपान आदि के कारण होती है अथवा प्रेम की उमंग या अभिमान आदि के कारण। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 218। मनोमय कोश, भारतीय दर्शन में आत्मा के आवरण रूप पंच कोशों की कल्पना की गई है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसी प्रकार नीचे से क्रमानुसार तीसरा कोश मनोमय कोश है। उदाहरण, मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि है, यही हमारा पक्ष है। इसके भीतर वस्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी करके उसे इसके बाहर के किसी तथ्य का जिसका कुछ ठिकाना नहीं है सूचक बताना हमें सच्चे कवि का क्या सच्चे आदमी का काम नहीं समझते। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 74। मनोरंजन, मन का प्रसादन, मन का सुखी और आह्लादित होना, काव्य के संदर्भ में पाठक या श्रोता के चित्त को वर्ण विषय में रमाने वाली शक्ति। उदाहरण, मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त वृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 27। मनोवेग, मनोविकार विषयों का बोध होने पर उनके अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न सुख दुखात्मक अनुभूतियां जब बहुविध मानवीय इच्छाओं से प्रेरित होकर उनके विषयों के प्रति अनेक जटिल मानसिक स्थितियों की सृष्टि करती हैं, तो इन स्थितियों को मनोवेग या मनोविकार कहते हैं। उदाहरण, यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायता से हैं। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 48। मंदाक्रांता, वह वर्णिक वृत्त जिसमें क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा अंत में गुरु गुरु का विधान होता है। कुल 17 वर्णों होते हैं और 4, 6, 7 वर्णों पर्यति होती है। उदाहरण, इस बात का अनुभव तो बहुत से लोगों ने किया होगा कि संस्कृत में मंदाक्रांता, श्रृंखला, मालिनी, शिखरिणी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा इत्यादि वर्ण वृत्तों में नाद सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 147। मरण, शरीर का सदा सदा के लिए निश्चेष्ट हो जाना और उससे प्राण तत्व का निकल जाना मृत्यु है। रौद्र रस के अंतर्गत नायक के वीरत्व की व्यंजना के लिए शत्रु का मरण दिखाया गया है। उदाहरण, इसी प्रकार मरण, व्याधि और अपस्मार भी तभी संचारी होंगे जब किसी भाव के कारण होंगे, अन्यथा नहीं। मर्त्य, मरशील उपनिषदों में मर्त्य और सत के लिए भी मर्त्य शब्द प्रयुक्त है। जो मूर्त और सत है वह सतत परिवर्तनशील है, इसीलिए उसे मर्त्य कहा जाता है। उदाहरण, ब्रह्म के मूर्त अमूर्त दो रूपों में से मूर्त और सत का जो मर्त्य कहा जाता है वह केवल सतत गति युक्त या परिवर्तनशील के अर्थ में, सत्ता के अभाव के अर्थ में नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 82। मर्मस्पर्शी, पाठक के चित्त को आर्द करने वाले, मर्म को छू लेने वाले उदाहरण, जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है, वे मनुष्य जीवन के मर्मस्पर्शी स्थल हैं, जो कथा प्रवाह के बीच में आते रहते हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 69। मर्यादा जीव, वेद विहित मार्ग का निष्ठा पूर्वक अनुसरण करने वाला जीव मर्यादा जीव है। उदाहरण, उपर्युक्त तीन मार्गों पुष्टि मर्यादा प्रवाह के अनुरूप ही जीव भी तीन प्रकार के कहे गए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव एवं प्रवाह जीव। मर्यादा पुष्टि भक्ति, जो संसार के विषय भोग से अपना मन हटाकर भगवान की लीला के श्रवण कीर्तन एवं इत्यादि के द्वारा अपना मन भगवान में लगाते हैं। उदाहरण, दूसरा मार्ग मर्यादा पुष्टि भक्ति मार्ग उन लोगों को समझना चाहिए जो संसार के विषय भोग से अपना मन हटाकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान की लीला के श्रवण कीर्तन आदि द्वारा अपने को भगवान की ओर लगाते हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 57। मर्यादा मार्ग, वेद प्रतिपादित कर्म और ज्ञान के संपादन का मार्ग मर्यादा मार्ग है। उदाहरण, वल्लभाचार्य जी ने प्राणियों के अनुसरण के तीन मार्ग कहे हैं, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग। सूरदास पृष्ठ संख्या 54। मलकूत, सूफी साधना की दूसरी मंजिल, इस अवस्था में साधक पवित्रता का जीवन अपनाता है, वह भौतिक जगत की दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है फरिश्तों का मकाम। उदाहरण, शाहजहां के पुत्र दारा शिको ने अपनी छोटी सी पुस्तक रिसाले हकनुमा में चार जगत कहे हैं, आलमे नासूत, आलमे मलकूत, आलमे अरवाह, आलमे जबरूत, आलमे लाहूत, सत्य जगत या ब्रह्म। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 138। मसनवी, उर्दू का एक छंद जिससे हर शेर के दोनों मिसरे सानुप्रास होते हैं और जिसका हर शेर दूसरे शेर से रदीफ काफिये में नहीं मिलता। यह शब्द मूलतः अरबी का है। फारसी में इस छंद का प्रयोग किसी लंबी कहानी को पद्यबद्ध करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इस छंद में बद्ध लंबी कहानियों की शैली को मनस्वी शैली कहने लगे। उदाहरण, मशनवी के साहित्यिक नियम तो केवल इतना ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही मशनवी छंद में हो, पर परंपरा के अनुसार उसमें कथारंभ के पहले ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा शाहे वक्त की प्रशंसा होनी चाहिए। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 4। महाकाव्य, प्रबंध काव्य का एक भेद। संस्कृत के आचार्यों में भामा, दंडी, रुद्रट, हेमचंद्र, विश्वनाथ आदि ने महाकाव्य को परिभाषित किया। दंडी के अनुसार महाकाव्य का कथानक इतिहास या कथा से उद्भूत होता है, नायक चतुर और उदात्त होता है, उसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होता है, वह सर्गबद्ध और पांचों नाट्य संधियों से युक्त होता है, वह भावों और रसों से समृद्ध और सुंदर युक्तियों से अलंकृत होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, उसका नायक कोई देवता या प्रख्यात राजवंश का क्षत्रिय होता है, यह नायक धीरोदात होता है, एक राजवंश में उत्पन्न हुई राजाओं की चरित्र चर्चा भी महाकाव्य में हो सकती है। श्रृंगार, वीर और शांत रसों में कोई एक अंगी और अन्य रस अंग रूप में आ सकते हैं। नाटक की सभी संधियों का समावेश कथा संगठन में हो सकता है। कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए। महाकाव्य का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरंभ में मंगलात्मक होता है, मंगल विधान नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक होता है। आरंभ में सज्जनों की प्रशंसा और खलों की निंदा भी विहित है। प्रत्येक सर्ग की रचना किसी एक वृत्त में होती है, सर्ग के अंत में अन्य वृत्त का प्रयोग हो सकता है। सर्गों की संख्या 8 से कम नहीं होनी चाहिए। सर्गों का आकार न बड़ा न छोटा अर्थात संतुलित होना चाहिए। सर्ग के अंत में आगे आने वाले सर्ग की कथा का संकेत होना चाहिए। वस्तु वर्णन के अंतर्गत संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्यान्ह, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, उपवन, समुद्र, संयोग, विप्रयोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, उपाय, चतुष्टय, साम, दाम, दंड, भेद, पुत्र, जन्मोत्सव आदि का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। वस्तुतः महाकाव्य की अवधारणा देश काल के अनुसार बदलती रही। आज उपर्युक्त लक्षण से रहित महत भावनाओं एवं जीवन के महत उद्देश्यों को व्यक्त करने वाले उदात्त तत्वों से युक्त रचनाओं को भी महाकाव्य कहा जाने लगा। आज जीवन की छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्षरत सामान्य जन भी महाकाव्य के नायक होने लगे हैं। यूं अब महाकाव्य का स्थान उपन्यासों ने ले लिया है और इसके माध्यम से जीवन व्यापी यथार्थ की अभिव्यक्ति की संभावनाएं बढ़ गई है। उदाहरण, स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक और परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाली अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं है। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ संख्या 225। माधुर्य, नायिका और नायक की ऐसी रमणीयता जो सभी अवस्थाओं में अक्षुण्य रहती है, माधुर्य है। सर्वावस्था विशेषेषु माधुर्य रमणीयता, साहित्य दर्पण 181। उदाहरण, रूप सौंदर्य के अंतर्गत प्रायः दीप्ति और माधुर्य दोनों मिले रहते हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 90। माधुर्य पक्ष, काव्य का वह पक्ष जिसमें माधुर्य का प्राधान्य हो। माधुर्य में सहृदय के हृदय को द्रवीभूत करने की क्षमता होती है। हृदय को द्रवित करने के लिए असामान्यता या चमत्कार या चमत्कृत करने वाली दीप्ति आवश्यक नहीं है। उदाहरण, इन गुणों के अधिष्ठान का असामान्य, अलौकिक या दीप्त होना आवश्यक नहीं है। महाकवि कालिदास ने बरसात में चारों ओर दिखाई पड़ने वाले खूमी के पौधों, तुरंत के जूते, खेतों की सौंधी मिट्टी और भूविलासन भिज्ञ गांव की सीधी साधी स्त्रियों और पुरानी कहानी कहते हुए बुढ़ों तक में इस माधुर्य का साक्षात्कार किया है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 85। नोट, काव्य शास्त्र के ग्रंथों में नायक नायिका के अंगज अलंकारों में माधुर्य की चर्चा की गई है। शुक्ल जी ने माधुर्य की परिभाषा वहीं से ली है, किंतु इस शब्द का प्रयोग काव्य के मधुर पक्ष के संदर्भ में किया गया है। माधुर्य भाव, भगवान के रूप माधुर्य पर मुग्ध होकर उनको अपने परम प्रियतम मान लेना और उनके प्रति दाम्पत्य भाव का संबंध स्थापित करना माधुर्य भाव है। चित्त विषयक होने के कारण यह लौकिक श्रृंगार से भिन्न है। उदाहरण, बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की जो प्रथा थी, उसमें से इस माधुर्य भाव को और भी सहारा मिला। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 161। माया, प्रकृति के तीन गुणों में जब शुद्ध सत्व का उत्कर्ष होता है तब उसे माया कहते हैं। उदाहरण, जब माया या शक्ति के तीन गुणों में से शुद्ध सत्व का उत्कर्ष हो तब उसे माया कहते हैं, और इस माया में प्रतिबिंबित होने वाला ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर कहते हैं। मार्फत, सूफी साधना की चौथी अवस्था, इस अवस्था में साधक परमात्मा से एकत्व स्थापित करता है, उसे भिन्नता का भाव मिथ्या प्रतीत होने लगता है। उदाहरण, मार्फत अर्थात सिद्धावस्था, जिसमें कठिन उपवास और मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और वह भगवान की सुंदर प्रेममय प्रकृति का अनुसरण करता है, उसे प्रेममय हो जाता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 142। उदाहरण, ये चार बसेरे सूफी साधकों की चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 63। मालिनी, इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं, क्रमशः नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ का विधान होता है, 8 और 7 पर यति होती। मिलित, मिलित, जहाँ कोई वस्तु समान लक्षण वाली दूसरी वस्तु से इस प्रकार मिल जाए कि उसे अलग से लक्षित न किया जा सके, वहाँ मिलित अलंकार होता है। मिलित वस्तुना गुप्ती केन चतुल्य लक्ष्मणा, साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद पृष्ठ संख्या 858। उदाहरण, सिय तुव अंग रंग मिली अधिक उदोत, हार वेली पहिरावो चंपक होत, मिलित गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 18। मुकामात, सूफी साधना में नफ्स से धर्म युद्ध करते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर होने के क्रम में कई पड़ाव आते हैं, इन पड़ावों को मुकामात कहते हैं। उदाहरण, इस मार्ग में कई पड़ाव हैं जो मुकामात कहे जाते हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 143। मुक्तक, स्फुट पद्य की वह कविता जिसमें कथा का क्रम ना हो। उदाहरण, रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रतियों से संबंध रखते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 9। मुक्तक छंदवाद, यूरोपीय काव्य क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के प्रचार के साथ ही छंद के परंपरागत बंधन से कविता को मुक्त करने का प्रयास किया गया। सन 1889 में प्रकाशित विले ग्रफिन की का काव्य संग्रह मुक्त छंद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। वस्तुतः मुक्त छंद में भी अनुभूति के मनोवैज्ञानिक दबाव का नियंत्रण रहता है। मुक्त छंद मात्रा आदि के बाह्य बंधनों से भले मुक्त हो, मन स्थिति और अनुभूति के दबाव से वह मुक्त नहीं होता। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन की कविताएं मुक्त छंद का आदर्श मानी जाती हैं। हिंदी में मुक्त छंद का प्रयोग निराला ने सबसे पहले किया। प्रयोगवादी कवियों ने इस क्षेत्र में भी नए प्रयोग करने की चेष्टा की। उदाहरण, रहस्यवादी प्रतीकवाद, मुक्तक छंदवाद, कला का उद्देश्य कलावाद इत्यादि तो वह अब वहाँ बहुत दिन के मरे हुए आंदोलन समझे जाते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 324। मुक्त हृदय, सृष्टि के रूपों और व्यापारों की भावना में लीन होकर विशुद्ध अनुभूति सत्ता को विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाने वाला हृदय अपने व्यक्तिगत योग क्षेम की भावना से ऊपर उठकर सामान्य भाव भूमि में लीन हृदय। उदाहरण, सृष्टि के रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 5। मुद्रा, मुख्यार्थ समन्वित शब्दों द्वारा जब सूच्य कथा वस्तु की ओर भी संकेत किया जाए तो मुद्रा अलंकार होता है। उदाहरण, बात की काट छांट वाले अलंकार जैसे परिसंख्या यद्यपि जायसी में कम है, पर कई प्रसंगों में जहां किसी पात्र का वाक चातुर्य दिखाना कवि को इष्ट है, वहां श्लेष और मुद्रा अलंकार का आश्रय बहुत लिया गया है, यहाँ तक कि उबाने लगता है। जायसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 117। मुराकबत, संसार में चित्त हटाकर ईश्वर के ध्यान में लगाना। उदाहरण, उसकी कल्प की शुद्धि जिक्र स्मरण और मुराकबत ध्यान से होती है। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 139। मूर्त प्रत्यक्षीकरण, अमूर्त भावनाओं का गोचर विधान। उदाहरण, तीव्र अंतर्दृष्टि वाले कवि अपने सूक्ष्म एब्स्ट्रैक्ट विचारों का बड़ा ही रमणीय मूर्त प्रत्यक्षीकरण करते हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 66। मूर्तिमत्तावाद, इमेजिज, 19वीं शती की वैचारिक एवं दार्शनिक प्रधानता अंग्रेजी कविता की प्रतिक्रिया में 20वीं शती के प्रथम चरण में फ्रांसिसी स्टुअर्ट, फिल्टन, हिल्डा डूलिटिल, रिचर्ड एलिंगडिंगटन, टी ह्यूम, एजरा पाउंड आदि द्वारा प्रवर्तित काव्य वस्तु के प्रत्यक्ष मूर्त विधान पर बल देने वाला आंदोलन मूर्तिमत्ता का बिंबवाद भी कहते हैं। हिंदी कविता के संदर्भ में यह समझा जाता है कि प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलन के साथ बिंबवाद का आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण, मूर्तिमत्तावाद इमेजिज्म के प्रवर्तक फ्लिंट एफएस फ्लिंट थे, जिनकी तारक जाल में नाम की पुस्तक 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 326। मूल भाव, वे भाव जिनकी अनुभूति किसी दूसरे भाव की पूर्वानुभूति पर आश्रित नहीं होती। उदाहरण, जिस भाव को अनुभूति किसी दूसरे भाव की पूर्वानुभूति पर आश्रित न हो वह मूल भाव है, जैसे क्रोध, भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य। मेटानॉमी, जहां आधे के स्थान पर आधार का कथन हो वहां मेटानॉमी अलंकार होता है। उदाहरण, यूरोपीय अलंकार शास्त्र में आधे के स्थान पर आधार के कथन की प्रणाली को मेटानॉमी अलंकार कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेम और एन एट्रीब्यूट फॉर द थिंग इटसेल्फ। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 120। नोट, अंग्रेजी कोशों में विशेष्य के स्थान पर विशेषण के प्रयोग में मेटानॉमी अलंकार होता है। संभव है कि व्यापक अर्थ में आधे के स्थान पर आधार के प्रयोग में ही इस अलंकार की स्थिति मानी जाती है। मोक्ष, यदि कहा जाए तत्व ज्ञान होने पर आसक्ति या वस्तु के प्रति राग समाप्त हो जाता है, आसक्ति न होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, यही मोक्ष है। उदाहरण, यदि कहा जाए कि मोक्ष की इच्छा का फिर क्या अर्थ होगा, इसका उत्तर यह है कि मोक्ष या मुक्ति केवल अभाव सूचक अर्थात निगेटिव शब्द नहीं है जिसका अर्थ छुटकारा। जिससे मोक्षार्थी छुटकारा चाहता है वह दुख आदि क्लेश है संघात उसे ज्ञात होता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 81। मोह, प्रिय के वियोग, भय, व्याधि, मोह प्रिय के वियोग, भय, व्याधि तथा शत्रु के प्रतिकार से असमर्थ होने पर उत्पन्न मानसिक विक्षिप्ति ही मोह है। उदाहरण, मोह दुखावेग के कारण ही होता है और उसमें चित्त की व्याकुलता और मूर्छा होती है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 223। उदाहरण, पति का मरण सुनने पर रति की मूर्छा आ जाने के क्षण भर के लिए सुख दुख का कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया, यह अवस्था मोह है। रश्मिमांसा पृष्ठ संख्या 223।